तो आज एकादशी है, आज हम लोग प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे। प्रभुपाद जी सर्वप्रथम बुक डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किए और भागवत गीता मैराथन शुरू किया उन्होंने, उस बारे में पढ़ेंगे। ये शुरू किए थे सैन फ्रांसिस्को में, जुलाई 1970 से प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को में 1970 ईस्वी की रथ यात्रा में सम्मिलित हो रहे थे। उस दिन ठंडक थी और तेज हवा चल रही थी और करीब 10,000 लोग भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए थे, जो गोल्डन गेट पार्क से निकल रही थी। श्रील प्रभुपाद हजारों सहभागियों के साथ उस शोभा यात्रा के बीच सड़क में नाच रहे थे। सागर तट के सभा मंडप में उन्होंने बृहद श्रोता मंडली को संबोधित किया और अपने शिष्यों को हजारों लोगों को निःशुल्क शाकाहारी प्रसाद वितरण करते देखा था, किंतु उन्हें विशेष प्रसन्नता उस समय हुई लगती थी जब एक भक्त लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण खंड एक की आधा दर्जन अग्रिम प्रतियां लेकर वहां पहुंचा। भक्तों और उत्सव में सम्मिलित होने वाले उत्सुक लोगों से घिरे प्रभुपाद ने पुस्तक की एक प्रति हाथ में ले ली और वे राधा कृष्ण के पूरे रंगीन चित्र से अलंकृत उसके आवरण पृष्ठ की सराहना करने लगे। पुस्तक का आकार बड़ा था, करीब 10.5 इंच लंबा था, 7.5 इंच चौड़ा। उसके रूप हले आवरण पर सुनहरे चमकते हुए बड़े लाल अक्षरों में अंकित था कृष्ण। ऐसा लगता था मानो प्रभुपाद के श्रद्धालु हाथों में एक दिव्य आश्रय विराज रहा हो। प्रभुपाद को दबाते हुए उनके कंधों के ऊपर से झुककर पुस्तक को देखने को लोग दर्शक नहीं रोक पा रहे थे और वे अपनी प्रशंसोक्तियां नहीं रोक सके। जब प्रभुपाद ने मुस्कुराते हुए पुस्तक के पन्ने पलटे, उन्होंने पुस्तक के चित्रणों, मुद्रक कागज और जिल्द साजी का परीक्षण किया और कहा, बहुत अच्छा। उन्होंने एक पृष्ठ को पढ़ते हुए उस पर ध्यान केंद्रित किया, तब उन्होंने सिर ऊपर उठाया और कहा कि ये बहुमूल्य पुस्तक कृष्ण अभी प्राप्त हुई है और प्रत्येक व्यक्ति को इसे पढ़ना चाहिए। उन्होंने पुस्तक की एक प्रति हाथ में ली जबकि शेष प्रतियां का ढेर उनके सामने रखा रहा और वे बोले, जो कोई पुस्तक खरीदना चाहता है वो आगे आए और खरीद ले। लोग पुस्तक मांगने के लिए शोर मचाने लगे और 10-10 डॉलर लिए हाथ आगे बढ़ाने लगे। एक एक व्रत के लिए लोगों में हल्ला मच गया और प्रभुपाद ने देखते देखते सारी की सारी प्रतियां बेच डाली, अपने लिए एक भी प्रति नहीं रखी। जहां तक भक्तों का संबंध है, रथ यात्रा की सबसे अधिक चमत्कारिक घटना श्रील प्रभुपाद द्वारा कृष्ण पुस्तक की बिक्री थी। समूहों में बैठकर भक्त खरीदी गई प्रतियों का परिशीलन करने लगे और कृष्ण की बाल लीलाओं की चर्चा करते हुए अमेरिका के लोगों पर उनके प्रभाव का अनुमान लगाने लगे। ब्रह्मानंद ने बताया कि किस प्रकार 1967 में प्रभुपाद ने टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य भगवान चैतन्य की शिक्षाएं पुस्तक के अग्रिम प्रति 26 सेकंड एवेन्यू न्यूयॉर्क के अपने कमरे में सत्य व्रत को भेंट दे दी थी। उस पुस्तक के पहुंचने के ठीक पहले प्रभुपाद अपने कमरे में बैठे सत्य व्रत से वार्तालाप कर रहे थे। सत्य व्रत उनका शिष्य था और अपने गुरु भाइयों से मामूली सी बात पर झगड़ा हो जाने के कारण कुछ समय से उसने आना बंद कर दिया था। जब टीचिंग आप लॉर्ड चैतन्य की प्रति पहुंची तो प्रभुपाद ने उसका प्रेम पूर्वक अवलोकन किया और तब उसे सत्य व्रत को उपहार में दे दिया था। ब्रह्मानंद इस तरह शील प्रभुपाद को अपने एकमात्र प्रति सत्य व्रत को देते हुए देखकर भौचक्का रह गया। ब्रह्मानंद जानता था कि प्रभुपाद ने पुस्तकों को लिखने में कितना परिश्रम किया था और उसने उसके प्रकाशन में स्वयं भी सहायता की थी और उन्होंने एक वर्ष तक उनके मुद्रित होने की कितनी उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा की थी। ऐसा होते हुए भी उसके पहुंचने से तुरंत बाद प्रभुपाद ने उसे एक ऐसे शिष्य को उपहार दे दिया जो स्थायी रूप से उनका शिष्य भी नहीं था। सत्यव्रत ने पुस्तक ले ली, प्रभुपाद को धन्यवाद दिया और फिर ऐसा गया कि दोबारा कभी दिखाई नहीं दिया। यद्यप शील प्रभुपाद चाहते थे कि उनके शिष्यों में भी कृष्ण भावना भावित साहित्य को वितरित करने की उतनी उत्सुकता हो जितनी उनमें थी, लेकिन उनमें से कोई नहीं जानता था कि यह कैसे किया जाए। एक पत्रिका का वितरण करना और उसके लिए अल्प अनुदान मांगना एक बात थी, किंतु एक मस्जिद बड़े ग्रंथ की बात ही दूसरी थी। जब अप्रैल 1967 में टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य की पूरी खेप जहाज से न्यूयॉर्क पहुंची थी तो भक्त एक किराए का ट्रक लाए और बंदरगाह से उसे लादकर 26 सेकेंड एवेन्यू ले गए थे। फिर वहां से उन्होंने पुस्तक की प्रतियां इस्कान के केंद्रों लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, वेस्टर्न मॉन्ट्रियल तथा अन्य स्थानों को भेजी थी और वे वहां पड़ी हुई थी। कुछ भक्तों ने पत्र पत्रिकाओं में विज्ञापन छापने और पुस्तक भंडारों में उन्हें भुगतान पर रखने की कोशिश की थी, किंतु उनकी बिक्री नहीं हुई थी। इन सजिल्द विशाल पुस्तकों की बिक्री कैसे हो यह एक रहस्य बना रहा, जब तक एक महत्वपूर्ण घटना नहीं घटी, वह भी संयोग से। सन 1971 में एक दिन सैन फ्रांसिस्को में एक पुराने शहरी भाग में कीर्तन करने के बाद मंदिर को वापस जाते हुए दो ब्रह्मचारी कार में पेट्रोल लेने के लिए एक स्थानीय सर्विस स्टेशन पर रुके। जब स्टेशन का कर्मचारी खिड़की पर पैसे लेने के लिए आया तो एक भक्त ने उसे कृष्ण पुस्तक दिखाई। उस कर्मचारी ने उसमें रुचि प्रदर्शित की और दोनों भक्तों ने कृष्ण भावना मित्र की महिमा का बखान करना आरंभ कर दिया। जब उन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमत के स्थान पर वह पुस्तक ले ले तो वह सहमत हो गया। जो कुछ हुआ उस पर विस्मित होकर और अपनी सफलता से उत्साहित होकर दोनों ब्रह्मचारी अगले दिन पुस्तक की कई प्रतियों के साथ एक पंसारी की दुकान के सामने जाकर खड़े हो गए और इस बार फिर वही हुआ। इस बार पुस्तक की दो प्रतियां बिक गई। सैन फ्रांसिस्को मंदिर के अध्यक्ष केसो ने लॉस एंजलिस में जीबीसी के निरीक्षक और अपने भाई करंधर को फोन करके बताया कि क्या घटित हुआ था। केसो ने कहा, यह एक आश्चर्य जैसा है। करंधर ने इस प्रयोग को आगे बढ़ाने के लिए उसे प्रोत्साहित किया और शीघ्र ही सैन फ्रांसिस्को मंदिर के आधे दर्जन भक्त घर घर जाकर लोगों को पुस्तकें दिखाने लगे। जब बुद्धिमंत एक दिन में 5-5 पुस्तकें बेचने लगा तो अन्य मंदिरों विशेषकर लॉस एंजलिस, सैन डियागो और डेनवर के भक्तों ने इस उदाहरण का अनुकरण करना चाहा और जिसने भी प्रयत्न किया और एक दो पुस्तकें बेच ली वह इस सुख बोध के आवेश में बंध गए। शील प्रभुपाद की पुस्तकों को बेचने से प्राप्त अनुभव और उनके विषय में भक्तों के साक्ष का आनंद एक विशेष प्रकार का था जो उस प्रसन्नता से बिल्कुल भिन्न था जिसकी अनुभव युवा जन विक्रय की कोई विधि अचानक हाथ लग जाने से साधारणतया करते थे और जिसके परिणाम स्वरूप वे बहुत सा धन कमाने के कगार पर पहुंच जाते थे। विभिन्नता इस बात में है कि भक्तों द्वारा पुस्तक का वितरण कृष्ण की भक्ति है और इससे प्राप्त उल्लास दिव्य होता है जो बड़े से बड़े भौतिक सुख से भी परे है। सामान्य व्यवसाय और कृष्ण चेतना युक्त साहित्य बेचने का व्यवसाय एक दूसरे से इतना ही भिन्न है जितना भौतिक जीवन आध्यात्मिक जीवन से, और आध्यात्मिक जीवन को भौतिक दृष्टि से देखने पर कोई भी उसे समझ नहीं सकेगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती कृष्ण भावना मित्र के परम आनंद को समझने के ऐसे अनुभव जन्य प्रयत्नों की तुलना मधु का स्वाद जानने के लिए बोतल को बाहर से चाटने के प्रयत्न से किया। उन युवकों और युवतियों को जो अमेरिका में पुस्तक का वितरण करने लगे ज्ञान हो गया था कि कृष्ण भावना मित्र देकर प्रभुपाद ने उन्हें नारकीय जीवन से बचा लिया था और अब वे औरों को कृष्ण भावना मृत देने में उनकी सहायता करना चाहते थे और उनकी पुस्तकों का वितरण करके वे जो प्रचार कर रहे थे वह आनंद का वितरण था, आध्यात्मिक आनंद का। 1971 ईस्वी के मध्य तक मंदिरों द्वारा प्रति सप्ताह कृष्ण पुस्तकों की सैकड़ों प्रतियां बिकने लगी थी। धरंधर ने जो प्रभुपाद का पुस्तक क्रोध कोष प्रबंधक था, उत्तर अमेरिका के मंदिरों को और शील प्रभुपाद को संकीर्तन समाचार पत्र भेजना आरंभ कर दिया। प्रत्येक मंदिर की प्रति मास की पुस्तक बिक्री का परिणाम देकर समाचार पत्र प्रतिद्वंदिता को भावना पैदा करने लगा। करंधर के दिसंबर 1971 के पत्र ने उस वर्ष की प्रवृत्ति का सारांश दिया और भक्तों को प्रोत्साहित किया कि वे बिक्री बढ़ाएं। हाल में पुस्तकों के विक्रय को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप सैन फ्रांसिस्को मंदिर प्रतिदिन लगभग 20 कृष्ण पुस्तकें बेचता रहा। उसकी तकनीकी क्या है, केशव प्रभु कहना है, केवल अपने कार्यकलापों में हम इसे प्राथमिकता देते हैं। आपको केवल ये करना है कि आप इसे करना चाहें और तब अधिक से अधिक परिश्रम करके उसे करने की कोशिश करें। हम जहां कहीं भी जाते हैं वहां अपने साथ बीटीजी की और कृष्ण पुस्तकें ले जाते हैं। वह कहता है, सड़क में दरवाजे दरवाजे पर लॉन्ड्रियों से लेकर पुस्तक भंडार तक सर्वत्र हम पुस्तकों का वितरण करते हैं। पुस्तकों की बिक्री बढ़ाने की नई आकर्षक तकनीक निकालने के लिए हम हर तरह से अपने दिमागों पर जोर डालते हैं, किंतु हमारा अनुभव है कि इससे अधिक सफल और कोई तरीका नहीं है कि कृष्ण की अहित की कृपा स्वरूप इस पुस्तकों को स्वयं हाथ में लेकर दरवाजे दरवाजे जाया जाए। तनिक सोचिए, हम प्रतिदिन कितने घंटे विशेष रूप से शील प्रभुपाद के साहित्य वितरण में बिताते हैं जो उनका सबसे प्रिय विषय है, किंतु उस वर्ष के संकीर्तन की सर्वोत्तम उपलब्धि की स्वीकृति करंधर के पत्र में नहीं वरन स्वयं प्रभुपाद के उस पत्र में थी जो उन्होंने कृष्ण पुस्तक वितरण के बादशाह केशव को लिखा। मुझे कई समाचार मिलते रहे कि किसी प्रकार की भी मेरे सैन फ्रांसिस्को के शिष्यों को पुस्तक वितरण में कोई पछाड़ नहीं सकता। कभी कभी वे एक दिन में 70 कृष्ण पुस्तकें तक बेच लेते थे। यदि ये सच है तो निश्चय ही जब मैं संयुक्त राज्य वापस आऊंगा तो तुम्हारे मंदिर में रुकूंगा। मेरे पुस्तकों की इतनी बड़ी संख्या में बिक्री करके तुम मुझे अनुवाद करने में बड़ा प्रोत्साहन दे रहे हो और तुम सब उस आदेश को पूरा करने में मेरी सहायता कर रहे हो जो गुरु महाराज ने मुझे दिया था। अतः मैं तुम सबका बड़ा आभारी हूँ और मुझे विश्वास है कि यह कार्य करने के लिए कृष्ण तुम्हें लाखों लाखों बार कृपा दान करेंगे। आशा करता हूँ कि तुम और सैन फ्रांसिस्को के मेरे सभी प्रिय शिष्य खूब स्वस्थ और प्रसन्न चित्त हों। इस पत्र की प्रतियां सभी इस्कान केंद्रों को भेजी गई। प्रभुपाद अपने शिष्यों को सदैव आशीर्वाद देते रहते थे, किंतु किसी को स्मरण नहीं था कि उन्होंने किसी शिष्य के बारे में कभी कहा हो कि कृष्ण उसे लाखों लाखों बार कृपा दान करेंगे। यद्यपि प्रभुपाद का पत्र सामान्य किसी एक विशेष भक्त के लिए आदेश होता था, किंतु व्यवहार में प्रायः वह सबके लिए लागू माना जाता था और प्रभुपाद के पत्रों से ये बात स्पष्ट होती थी कि पुस्तक वितरण उनके शिष्यों का सर्व प्रधान कार्य था। मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि तुम लोग मेरे पुस्तकों और पत्रिकाओं की बिक्री बढ़ा रहे हो। यह इस बात का अच्छा लक्षण है कि तुम्हारा प्रचार कार्य भी मजबूती से चल रहा है। तुम जितना ही मजबूत अपना प्रचार कार्य बढ़ाओगे उतनी ही अधिक पुस्तकों की बिक्री बढ़ेगी। मैं विशेष रूप से चाहता हूं कि मेरी पुस्तकों का वितरण व्यापक स्तर पर हो। प्रभुपाद की अभिलाषा दिव्य साहित्य को संसारी साहित्य का स्थानापन्न बनाने की थी। उनका तर्क था कि प्रत्येक घर में कृष्ण भावना भावित साहित्य की कम से कम एक पुस्तक होनी चाहिए, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति एक पृष्ठ भी पढ़ लेता है तो उसका जीवन परिपूर्ण की ओर उन्मुख हो सकता है। उन्होंने लिखा, यदि पाठकों में से 1% भी भक्त बन जाए तो संसार बदल जाएगा। विज्ञापन देकर पुस्तकों के लिए आर्डर मंगाने वाले विज्ञापनदाता जहां 5% ग्राहकों के अनुकूल उत्तर में वो संतुष्ट होते थे। वहां प्रभुपाद उससे भी कम केवल 1% की बात करते थे। वे सोचते थे कि 1% भी पुस्तकें पढ़ें तो वे शुद्ध भक्त बन सकते हैं। भगवान कृष्ण ने भी भागवत गीता में इसकी पुष्टि की है, हजारों व्यक्तियों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है और सिद्ध व्यक्तियों में से कोई एक सचमुच मुझे जान पाता है। अतः संसार को कृष्ण भावना भावित बनाने के लिए दिव्य साहित्य की लाखों प्रतियों के वितरण की आवश्यकता होगी। श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि उनके शिष्य ये समझें कि उन्हें पुस्तकें क्यों वितरित करनी चाहिए और वे अपने पत्रों द्वारा उन्हें आदेश देते रहते थे। ईश्वर कौन है इसे केवल 4 शब्दों में संक्षिप्त किया जा सकता है। कृष्ण परम नियंता है। यदि तुम्हें यह विश्वास हो जाए और तुम उत्साहपूर्वक इसका प्रचार कर सको तो सफलता निश्चित है और तुम समस्त प्राणियों की सबसे बड़ी सेवा कर रहे होगे। उन्होंने जयद्वैत को लिखा, ये पुस्तकें और पत्रिकाएं माया की सेना के अज्ञान को परास्त करने के लिए हमारे सबसे बड़े प्रचार अस्त्र हैं और ऐसे साहित्य का हम जितना ही अधिक सृजन और संसार में वितरण करेंगे उतना ही अधिक हम इस संसार को अध्यात्मवाद के पथ पे उबार सकेंगे। जगदीश को उन्होंने लिखा था, मैं तुम्हारी पुस्तक बिक्री की रिपोर्ट देखकर उत्साहित हूँ क्योंकि इससे सिद्ध होता है कि तुम अपना उत्तरदायित्व समझते हो और अधिक से अधिक लोग हमारे साहित्य को पढ़ें। वस्तुतः हमारे प्रचार कार्य का यही दृढ़ आधार है। अन्य किसी आंदोलन को प्रचार करने का इतना बड़ा अधिकार प्राप्त नहीं है और यदि कोई हमारे कृष्ण भावना मित्र दर्शन को पढ़ता है तो अस्वस्थ हो जाता है। प्रभुपाल लगातार इस बात पर बल देते रहे कि कृष्ण भावना मित्र के समस्त कार्यक्रम जिनमें अर्चा विग्रह पूजन जनता में हरे कृष्ण कीर्तन तथा बाहर जाकर भाषण देने सम्मिलित थे चालू रखे जाएं, ये सारे कार्यक्रम महत्वपूर्ण थे किंतु जहां तक संभव हो अन्य कार्यक्रमों के साथ पुस्तक वितरण भी होना चाहिए। एक सन्यासी जिसका मुख्य कार्य जनता में भाषण देना था उसको प्रभुपाद ने लिखा, अधिक से अधिक पुस्तकों का वितरण करो। यदि कोई हमसे दर्शन की बात सुनता है तो इससे उसका लाभ होगा किंतु यदि कोई हमसे एक पुस्तक खरीदता है तो उसका जीवन बदल जाता है। अतः पुस्तक बेचना सर्वोत्तम प्रचार कार्य है। पुस्तकें बेचो, स्कूल कॉलेज जैसे सार्वजनिक स्थानों में कीर्तन करो, प्रचार करो। और फ्रांस में भगवान दास को लिख गए एक पत्र में भी उन्होंने इसी बात पर बल दिया है, तुम्हारे 3 मिनट के प्रचार से क्या होगा किंतु यदि वे एक पुस्तक खरीद लेते हैं तो उससे उनका जीवन बदल सकता है। पुस्तक बिक्री में बढ़ोतरी की इस अवधि में प्रभुपाद जी के एक नवदीक्षित सन्यासी के मन में यह धारणा उत्पन्न हुई कि भक्तों को अध्ययन में और अधिक समय लगाना चाहिए। न्यूयॉर्क मंदिर की यात्रा के दौरान इस नए सन्यासी ने खुले रूप में कहा कि भक्तों को श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के अध्ययन में प्रतिदिन 5 से 8 घंटे लगाने चाहिए। भक्त प्रभुपाद द्वारा निर्धारित एक नई समय सारणी का अनुगमन कर रहे थे जिसके अनुसार वे सवेरे के कार्यक्रम के बाद दिन भर सड़कों में कीर्तन और पुस्तक वितरण करते थे और शाम को लौटकर भागवत गीता की कक्षा में उपस्थित होते थे। किंतु अब विवाद उत्पन्न हो गया और प्रभुपाद को लॉस एंजलिस जरूरी फोन किया गया। जब प्रभुपाद को अपने सचिव से यह सब मालूम हुआ तो उन्होंने तुरंत लिखा, मेरे उत्तर है कि यह सड़कों पर कीर्तन अवश्य चलता रहे, यह हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। भगवान चैतन्य के आंदोलन का अर्थ संकीर्तन आंदोलन है। आप प्रतिदिन केवल 2 घंटे 16 माला जप के लिए और 2 घंटे सामूहिक पठन के लिए ले सकते हैं और शेष समय आपको बाहर संकीर्तन में लगाना। हमें पुस्तकें पढ़ना और पुस्तकों का वितरण दोनों करना है किंतु पुस्तकों का वितरण मुख्य प्रचार कार्य है। कक्षा में 2 घंटे का पठन पर्याप्त है, अतिरिक्त पठन भी कोई कर सकता है यदि उसके पास समय हो। हर समय पढ़ते रहना आवश्यक नहीं है। भागवत कक्षा के लिए 1 घंटा और सवेरे और श्रीमद् भागवत गीता या भक्ति रसामृत सिंध के लिए 1 घंटा सायंकाल पर्याप्त है। जनवरी 1972 श्रील प्रभुपाद ने जगदीश को लिखा, मेरे पुस्तकों के वितरण की नई विधियों के बारे में तुम्हें हमेशा सोचते रहना चाहिए। और भक्तों ने नई विधियां ढूंढ निकाली। क्रय विक्रय के केंद्र, जन संकुलन मार्ग, वाहन खड़े करने के स्थान आदि वे पहले से अधिक लोगों से मिल रहे थे। जन संकुलन मार्गों को क्रय विक्रय केंद्रों में प्रवेश करने से भक्तों की पहुंच अमेरिकी समाज के हृदय स्थल तक हो गई। अब उनकी भेंट धर्मिष्ठों और पापिष्ठों, धनी निर्धन, काले श्वेत सभी तरह के लोगों से होने लगी। पुस्तकों की बिक्री अब भी कठिन बनी रही, किंतु भक्त धैर्य का परिचय देते रहे। वे पुस्तकों के भारी गट्ठर ढोते रहे और उस साहित्य का वितरण करते रहे जो उनकी समझ में सभी समस्याओं का समाधान करने वाला था। भक्त खरीददारों को भौतिक शक्ति के चलते फिरते शिकारों के रूप में देखते, लोगों को केवल इंद्रिय और मानसिक सुख के निमित्त जीते देखते थे, जिनकी दारुण मृत्यु अवश्य भावी थी। कोई भी गंभीर भक्त गीता के आधार पर दार्शनिक दृष्टि से भौतिकवादियों की दुर्गति का वर्णन कर सकता था, किंतु अब तो वे प्रत्यक्ष रूप से उनकी यह दुर्गति देख रहे थे और प्रभुपाद की कृपा से दिग्भ्रमित आत्माओं को उनके दिव्य ज्ञान की आवश्यकताओं के अभाव से उबारने के लिए घोर प्रयत्न कर रहे थे। तब नगर नगर घूमकर पुस्तकों को बेचने की विधि को खोजी हुई। लॉस एंजलिस के कुछ ब्रह्मचारियों को लगा कि मंदिर में बैठे रहकर वे उस समय को नष्ट कर रहे थे जिसका सदुपयोग पुस्तकों के वितरण में हो सकता है। अतः उन्होंने एक गाड़ी में कृष्ण पुस्तकें लाद ली और वे क्षेत्रों में गए जहां वे एक सप्ताह रह सकते थे और सादा जीवन बिताते हुए पुस्तकों के वितरण में जितना चाहे समय लगा सकते थे। इस चलते फिरते संकीर्तन से पुस्तकों की बिक्री में एक और महत्वपूर्ण बाढ़ आ गई, क्योंकि इससे एक ऐसा वातावरण उत्पन्न हुआ जिसमें भक्त अपने कार्य में पूरे तन मन से लग सकते थे। यह नया कार्यक्रम शीघ्रता से इस कान की दुनिया में फैल गया और शीघ्र प्रभुपाद को यह पसंद आया। इंग्लैंड में यात्रा दल के विषय में आश्चर्यजनक समाचार से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं समझता हूं कि वहां के लोगों का कृष्ण भावनामृत आंदोलन की ओर रुचि उत्तरोत्तर बढ़ रही है। वे आप लोगों को अपने घरों में ठहरने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, पुस्तकें खरीद रहे हैं, कोई कोई कभी कभी भक्त बन रहे हैं। मेरे लिए ये सब बहुत उत्साहपूर्ण लक्षण है। इसी तरह हर गांव और नगर में रुकते हुए आगे बढ़ते रहो। इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड में, आयरलैंड में या ऐसा अन्य कोई स्थान हो तो वहां भी केवल कुछ समय के लिए भरको पुस्तकें वितरित करो और संकीर्तन जुलूस निकालो, उनके प्रश्नों के उत्तरों दो, कुछ पर्चे या सूचना पत्र निःशुल्क बांटो, जहां संभव हो प्रसाद या इस तरह की कोई छोटी चीज वितरित करो और यदि वास्तविक रुचि दिखाई दे तो नगर के लोगों से किसी स्कूल में, किसी घर में या किसी हाल में व्याख्यान की व्यवस्था करने की प्रार्थना करो। इस तरह मंजिल या सुविधा की चिंता किए बिना ही अपनी योजना की सफलता के लिए कृष्ण कृपा पर निर्भर रहो। बस उनके संदेश का प्रचार और उनकी पुस्तकों की बिक्री करते हुए जहां कहीं लोगों में रुचि दिखाई दे उनके बीच बढ़ते रहो। हमें वहां समय नष्ट नहीं करना चाहिए। जहां रुचि न हो, जहां लोग अमैत्रीपूर्ण हो, प्रचार के लिए जाने के लिए अन्य बहुत सारे स्थान हैं। श्रील प्रभुपाद कहने लगे थे कि नए केंद्रों की स्थापना अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह गई थी, क्योंकि यात्रा दल सारे देश में घूम रहे थे। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि वानकुवर मंदिर के अध्यक्ष ने यात्रा के लिए एक बस की व्यवस्था कर ली है तो उन्होंने लिखा, मैं समझता हूं कि माया के विरुद्ध युद्ध करने के लिए हमारा आंदोलन एक छापामार सैनिक दल बनता जा रहा है। बस द्वारा इस तरह की यात्रा करना माया को खदेड़कर संसार भर में कृष्ण भावना मृत की स्थापना का सर्वोत्तम उपाय है। प्रभुपाद को यह सुनकर प्रसन्नता हुई कि मंदिरों के अध्यक्ष और क्षेत्रीय नेता भी संकीर्तन यात्रा दलों में साथ प्रचार को जाने लगे थे। उन्होंने कहा कि सेनापति विषयक वैदिक धारणा यह है कि वह सबके आगे ही पंक्ति में लड़े, सुरक्षित होकर पीछे न बैठा रहे। वे देख चुके थे कि किस तरह उनके कुछ प्रमुख शिष्य प्रबंध के कार्यकलापों में फंस कर रह गए थे, इसलिए उन्होंने उन सबको परामर्श दिया कि वे यात्रा करें, प्रचार करें और जहां कहीं भी जाएं पुस्तकों का वितरण करें। वास्तव में यह इस्कान संस्था इसलिए विद्यमान है क्योंकि मैं निरंतर यात्रा करता हूं। इस वृद्धावस्था में भी मैं एक स्थान पर बैठा नहीं रहा हूं। अतः आप लोगों मेरे उदाहरण का अनुगमन करें और समस्त संसार में व्यापक प्रचार करें, यही चैतन्य महाप्रभु का प्रतिरूप है। जब कैलिफोर्निया के एक भक्त ने अपने विवाहित जीवन का परित्याग करके संकीर्तन यात्रा पर निकलने के लिए श्रील प्रभुपाद की अनुमति के लिए लिखा तो उन्होंने उत्तर दिया कि पारिवारिक जीवन का परित्याग करना जरूरी नहीं था। भगवान चैतन्य ने शिक्षा दी थी कि जब तक कोई पूरी तरह कृष्ण की सेवा करता है तब तक इसके कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि वह सन्यासी है अथवा गृहस्थ है। एक परिवार वाला व्यक्ति भी कभी कभी यात्रा कर सकता था और पुस्तकें वितरित कर सकता था, चाहे वह अकेला हो अथवा अपनी पत्नी के साथ हो। 1972 के अंत के निकट भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट के समाचार पत्रक में, जो अब करंधर के सहायक परमेश्वर द्वारा संकलित किया जाता था, पुस्तक वितरण में लगातार वृद्धि के परिणाम छपे। 25 से अधिक संकीर्तन यात्रा दलों के देश भर में भ्रमण से जो लाखों बद्ध आत्माओं के जीवन को प्रभावित कर रहा है, पुस्तकों के वितरण में आशातीत सफलता हो रही है। मध्य सितंबर से अब तक हमने लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण तीन भागों में की 15,000 से अधिक प्रतियां बेची है और अगस्त के मध्य से अब तक हमने भागवत गीता की बिना जिल्द 9,000 और सजिल्द 950 प्रतियां बेची है। मैकमिलन ने भी गीता की 20,000 प्रतियों में से जो उसने हमसे व्यावसायिक स्तर पर ली थी सब की सब बेच डाली और क्रिसमस की भारी मांग को देखते हुए वह उसका पुनर्मुद्रक कर रहा है। पुस्तक वितरण में दूसरे उछाल 1972 के अंत में आई। पिछले वर्ष भक्तों ने क्रिसमस दिवस का लाभ उठाकर द्वार द्वार जाकर कृष्ण पुस्तकें बेची थी, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि क्रिसमस का पर्व वास्तव में कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। रामेश्वर यह 22 दिसंबर 1972 की बात है कि संयोग से हमें लॉस एंजलिस में क्रिसमस की भीड़ का पता चला। निसंदेह हमने देखा कि भंडार में लोग अधिकाधिक संख्या में जा रहे हैं और वे भंडार कभी कभी आधी रात तक खुले रहते हैं। मैं बर्बैंक जोड़ी भंडार के सामने खड़ा था। लॉस एंजलिस में पुरस्कारों के लिए हमारे बीच विकट स्पर्धा चल रही थी और वह चरम उत्कर्ष को पहुंच रही थी। अतः दिन भर पागल की तरह वितरण करने पर मैंने लगभग $350 एकत्र किए थे और 650 पत्रिकाएं बेची थी। रात के लगभग 10 बज रहे थे। मुझे दृढ़ विश्वास था कि यह इस्कान का नया विश्व रिकॉर्ड था और उस दिन मुझे पछाड़ने वाला संभवतः कोई न था। यद्यपि भंडार 12 बजे तक खुला था किंतु बिक्री बंद पड़ने लगी और मैंने सोचा कि मुझे घर लौटना चाहिए। निसंदेह अन्य सभी लोग जा चुके हैं। 8 बजे के बाद कोई भी कहीं नहीं रुका। वे सभी मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मुझे उनसे प्रतीक्षा नहीं करानी चाहिए। इस तरह मेरे मन मुझे वापस जाने के लिए तत्पर कर रहा था। 11 बजे तक भंडार पूरी तरह सुना हो गया था। मैं कार में बैठा और वापस घर जाने लगा। मार्ग में मुझे सनसेट और वेस्टर्न पर दूसरी जोड़ी मिली जिसका नाम हॉलीवुड जोड़ी था। मैं दुविधा में पड़ गया था कि रुकूं या नहीं, क्योंकि उस भंडार में बड़ी भीड़ थी और वह 12 बजे रात तक खुला रहने वाला था, किंतु मैंने निश्चय किया नहीं, मुझे वापस जाना है क्योंकि अन्य भक्त मेरी प्रतीक्षा में होंगे। मैंने कितनी पुस्तकें बेची इसलिए मैं आगे बढ़ता गया। आखिर मैं मंदिर 12 बजने में 10 मिनट शेष रहने पर पहुंचा और सीधी संकीर्तन कक्ष में चला गया, किंतु वहां केवल मधुकंठ और सचिव बैठा था। मैंने कहा, अरे क्या सब लोग सो गए? उसने कहा, नहीं, अभी तक कोई वापस नहीं आया, तो क्या वापस आने वालों में सबसे पहला मैं था? ये थी क्रिसमस के पहले दिन की भीड़ की शोध। ये नितांत अनियोजित थी, किसी ने किसी को इतनी देर तक बाहर रुकने का आदेश नहीं दिया था, हमने ऐसा स्वेच्छा से किया था। अंत में रात के करीब 1:30 बजे सभी भक्त वापस आ गए और हम घेरे में बैठे संकीर्तन मानचित्र का अवलोकन कर रहे थे। उस रात हम सो नहीं सके क्योंकि हम सभी बाहर जाने को बहुत आकुल थे। हम सोच रहे थे हमें इतने सारे बद्ध जीव कहाँ मिलेंगे जिन्हें हम पुस्तकें बांटेंगे। हमारा शोरगुल और अट्टहास मंदोमत समूह जैसा था। उससे अपने कार्यकलापों में साथ वाले कमरे में सोया करंधर जाग उठा। वह लड़खड़ाता हुआ आंखें मलता हमारे कमरे में आया, किंतु जब उसने हम लोगों को और वहां जो कुछ हो रहा था उसे देखा तो वह ठहाका मारकर हंसने लगा और हम सबको सोने के लिए भेजते हुए बोला, कल के लिए तैयार हो जाओ। इस तरह हमने 22, 23, 24 दिसंबर की 3 दिन की हस्पर्धा दौड़ दौड़ी। इसके पूर्व हमारे आंदोलन के इतिहास में किसी ने भी इतनी पुस्तकें वितरित नहीं की थी। जिस दिन 25 से 40 तक पुस्तकें बिक जाती थी वह बहुत ही शुभ दिन माना जाता था, किंतु हम लोग इन 3 दिनों में प्रतिदिन 5,000 से 6,000 पुस्तकें बेच रहे थे। एक मंदिर ने मात्र इन 3 दिनों में लगभग 18,000 पुस्तकें वितरित की थी। उस समय श्रील प्रभुपाद बम्बई में थे, जहां जुहू में जमीन प्राप्त करने का उनका प्रयत्न उलझनों में फंस गया था। जमीन का मालिक अब जायदाद बेचने से मुकर रहा था और भक्तों को वहां से निकलने की कोशिश में था। यद्यपि श्रील प्रभुपाद उस जमीन पर राधा कृष्ण शिव विग्रह की स्थापना कर चुके थे, यद्यपि इन बातों से प्रभुपाद चिंतित थे, तथापि अपना प्रतिदिन का कार्यकलाप उन्होंने जारी रखा था। वे प्रातः भ्रमण के लिए जाते थे। डायरेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसा में सिंधु से संध्या समय व्याख्यान देते थे। संसार के अपने विभिन्न केंद्रों से पत्र व्यवहार करते थे। यहां तक कि जनवरी में बंबई में एक पंडाल कार्यक्रम करने की योजना बना रहे थे। जब प्रभुपाद को संयुक्त राज्य में लॉस एंजलिस और अन्य स्थानों से पुस्तक वितरण के संबंध में समाचार मिला तो वे बहुत प्रसन्न हुए और विस्मित हुए। यद्यपि संसार भर में के कई मामलों में उलझनों में थे, फिर भी वे उन सबको अलग रखकर अमेरिकाएं पुस्तक वितरण की जोरदार सफलता की खुशी में डूब गए। उन्होंने तुरंत अपने निजी सचिव को बुलाया और पत्र लिखा है, प्रिय रामेश्वर, तुम्हारा 27 दिसंबर 1972 का पत्र मिला और 22-24 दिसंबर 1972 के इन 3 दिनों में बिक्री पुस्तकों की संख्या जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। इस पर कठिनाई से विश्वास होता है कि एक मंदिर के द्वारा 3 दिन में 17,000 से अधिक पुस्तकें बेची जा सकी। इससे मुझे ऐसा लगता है कि आपके देश के लोग कृष्ण भावना मृत आंदोलन के प्रति कुछ कुछ गंभीर बनते जा रहे हैं, अन्यथा वे हमारे पुस्तकें क्यों खरीदते? किंतु वे ये देख सकते हैं कि हमारे बालक और बालिकाएं जो भक्त हैं कृष्ण भावना अमृत संदेश को वितरित करने में कितने कर्तव्यनिष्ठ तथा गंभीर हैं। वे इन्हें देखकर तुरंत प्रभावित होते हैं और इसलिए पुस्तकें खरीदते हैं। संसार में ये अनुपम है, अतः मैं लॉस एंजलिस और संसार भर के अपने समस्त बालकों और बालिकाओं से अत्यंत प्रसन्न हूँ जो हमारे दिव्य साहित्य के इस अद्वितीय गुण को समझते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं और समस्त परिस्थितियों और कठिनाइयों के बावजूद स्वेच्छा से पुस्तक वितरण के लिए बाहर जाते हैं। केवल इसी एक प्रयत्न के बल पर उनका अपने घर परम धाम जाना सुनिश्चित है। उसी दिन प्रभुपाद ने करंधर को भी एक पत्र लिखा, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि हमारा इतना सारा साहित्य बांट पाना संभव हो सकेगा। अतः मैं समझता हूं कि यह केवल कृष्ण की कृपा है जो उनके नाम पर तुम लोग द्वारा निष्ठापूर्ण किए गए कार्य के कारण प्राप्त हुआ है। वस्तुतः यही मेरी सफलता का रहस्य है, इसलिए नहीं कि स्वयं मैंने कोई आश्चर्यजनक कार्य किया है, वरन इसलिए कि जो मेरी सहायता कर रहे हैं वे सत्यनिष्ठ हैं, उन्होंने अपना कार्य किया है। यही सारे संसार में जहां अन्य लोग असफल रहे हैं हमारी सफलता का कारण है। धूर्तता और झांसी पट्टी के इस युग में थोड़ी सी कर्तव्यनिष्ठा बहुत कठिन चीज है, किंतु मेरा सौभाग्य है कि कृष्ण ने तुम जैसे अच्छे बालकों और बालिकाओं को मेरे लिए भेज दिया है जो निष्ठापूर्वक कार्य कर रहे हैं। कृपया उन सबको मेरी आंतरिक सराहना पहुंचाना। क्रिसमस में पुस्तक वितरण में हुई सफलता को स्वीकार करते हुए और भक्तों को आश्वस्त करते हुए कि वे परम धाम जाएंगे, प्रभुपाद ने जो पत्र लिखे उससे नए वर्ष में पुस्तक वितरण आंदोलन को अत्यंत गति प्राप्त हो गई। पुस्तकों के वितरण के लिए नए स्थान और नई विधियों की खोज में भक्तजन लग रहे, नित नए दान दंड स्थापित हो रहे थे और भक्तगण भविष्य के लिए और भी बड़ी बड़ी योजनाएं बना रहे थे। फरवरी 1973 ईस्वी के समाचार पत्रक में रामेश्वर ने एक कॉलेज की छात्र का पत्र प्रकाशित किया जिसने श्रील प्रभुपाद की एक पुस्तक पढ़ी थी। इस कान की डाक में प्रत्येक मास इस तरह के सैकड़ों पत्र प्राप्त हो रहे थे। कुछ सप्ताह पहले मेरी समझ में डेनवर में से कुछ कृष्ण भक्त यहाँ अरकांसास विश्वविद्यालय में साहित्य वितरण करने आए थे। एक युवक मेरे पास आया और प्रभुपाद कृत गीता के अनुवाद की एक प्रति खरीदने के लिए मोटे स्वर में बोला। पहले मैं संकालु हुआ क्योंकि बहुत सारे लोग अपने अपने उत्तर बेचकर धनी बन रहे हैं और मैंने उससे कहा कि मुझे परेशान न करें, लेकिन वह हट करता रहा और अंत में मैं राजी हो गया। मैं गीता पढ़ता रहा हूँ और अभी तक उसे समाप्त नहीं कर सका हूँ। मैंने इसे बहुत लाभप्रद पाया हूँ। तर्क और अनुभव में विश्वास रखने वाले मेरे मन को इसमें किसी दिव्य पदार्थ का स्वाद मिलता प्रतीत सा रहा है। मैं इसके बारे में दूसरों से भी विचार विनिमय करता हूँ। मुझे पुस्तक की कुछ अनुच्छेद याद आ रहे हैं। संक्षेप में इसमें सही अर्थों में मेरी रुचि को इस प्रकार जागृत कर दिखा दिया है जो ईसाइयत जैन बौद्ध धर्म और निम्न योग साधना के रूप में मेरे विस्तृत अध्ययन से कभी नहीं हो पाई थी। संक्षेप में मैं समझता हूँ कि अंत में मुझे आरंभ मिल गया है। रामेश्वर संकीर्तन का नगाड़ा बजाता रहा। वास्तव में हमारे पुस्तक वितरण का प्रभाव कोई सही सही नहीं आंक सकता। यदि यह ज्ञात हो सके कि हम प्रतिमास कितनी पुस्तकें बेच लेते हैं तो हमारा नाम देश के सर्वप्रमुख पुस्तक विक्रेता की सूची में लिखा जाएगा। उदाहरण के लिए, जैसा आप में से बहुत से लोग जानते हैं, हमारी नवीन गीता की बिक्री पूर्व प्रकाशित गीता के किसी भी संकलन से आगे हो गई है। मैकमिलन कंपनी ने लाखों प्रतियां बेची है जबकि हमने स्वयं पिछले अगस्त में उसके पहली बार प्रकाशित होने के बाद अब तक 27,000 प्रतियां बेच डाली है। पुस्तक कोष में अधिक धन आने लगा था, इसलिए प्रभुपाद ने ट्रस्टियों और न्यासियों की इस योजना को स्वीकृत दे दी कि पुस्तक की अधिक प्रतियां छापी जाएं और उन्हें गोदाम में रखा जाए जहां से वितरण के लिए पूरा साल उन्हें मंदिरों के लिए उपलब्ध कराया जाए। किंतु गोदाम की व्यवस्था हो जाने पर भी पुस्तकों के लिए मंदिरों की मांग पूरी करना कठिन हो रहा था। छोटे आकार की आसानी से बिकने वाली पुस्तकें जैसे बियॉन्ड एंड डेथ, जन्म और मृत्यु से परे, ऑन द वे टू कृष्ण, कृष्ण की ओर, राज विद्या तथा द परफेक्शन ऑफ योग, योग की पूर्णता लाखों में छपी थी। वितरक अपने थैलों में तरह तरह की पुस्तकें भरकर निकलते थे। श्रीपुरुषद भागवत गीता, श्रीमद भागवत और कृष्ण द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, इनके साथ एक छोटी पुस्तकें भी ले जाते थे, बैक टू गॉड हेड पत्रिका की प्रतियां तथा कृष्ण की रिजर्वायर ऑफ प्लेजर और अनचैंटिंग हरे कृष्ण जैसी कुछ कम कीमत की पुस्तकें भी उनके साथ होती थी। टॉम बाउंड्री अपनी पत्नी के साथ सांता क्रूज कैलिफोर्निया में रहता था। वर्कली में भगवान चैतन्य के आविर्भाव दिवस के उपलक्ष में हुए उत्सव में सम्मिलित होने जहां वह दिन भर कीर्तन करता रहा और श्रील प्रभुपाद की भगवद गीता पढ़ने के बाद उसे लगा कि उसे श्रील प्रभुपाद का शिष्य बन जाना चाहिए। वह जप करने लगा और अपनी पत्नी तथा मित्रों को कृष्ण भावनामृत में अनुरक्त करने की प्रयत्न करने लगा। जब ब्रह्मचारियों का एक यात्रा दल सांता क्रूज में एक केंद्र स्थापित करने के लिए गया तो टॉम ने कहा कि वह उनके साथ सम्मिलित होना चाहता है, लेकिन वे लोग शंकालु हो गए। तब एक दिन वह सिर मुड़ाकर और धोती पहनकर प्रकट हो गया। टॉम बाउंड्री में प्रतिदिन कीर्तन दल के साथ जाने लगा। तब धीरे धीरे मैं बिक्री केंद्रों में छोटी पुस्तकें बेचने के लिए कीर्तन दल से अलग होने लगा। एक दिन मैं वापस आ गया और ब्रह्मचारियों में से एक ब्रह्मचारी सार्वभौम ने मेरी आलोचना की। उसने पूछा कि मैंने बड़ी पुस्तकें कितनी बेची है। मैंने कहा मैंने एक भी नहीं बेची है। वह बोला तुम्हारे साथ कितनी पुस्तकें लाए थे। मैंने कहा मेरे पास लाने के लिए एक भी पुस्तक नहीं थी। उसने कहा तब तुम माया में हो, तुम एक भी बड़ी पुस्तक नहीं लाए तो तुम उन्हें बेचने की आशा कैसे कर सकते हो। प्रभुपाद चाहते थे कि ये बड़ी पुस्तकें बेची जाएं। तो मैंने अपने मन में सोचा हाय मैंने जरूर माया में हूँ। मैंने कहा तुम इन पुस्तकों को कैसे बेचते हो। उसने कहा तुम प्रभुपाद से प्रार्थना करो, वे ही तुम पर कृपा करते हैं। तो मैंने सोचा हाँ ये ठीक है, कृष्ण भावनामृत में हर चीज ऐसे ही काम करती है। मैं अपने घर गया, मैंने इस बारे में सोचा और प्रभुपाद से प्रार्थना की कि मैं इन बड़ी पुस्तकों को बेच सकूं। मैं पूरी संध्या प्रार्थना करता रहा और तब मैंने आराम किया। सवेरे मैं उठा और यही बात मेरे मन में समाई रही। तब मैंने छोटी पुस्तकों वाले अपने थैले में एक बड़ी पुस्तक टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य भगवान चैतन्य के उपदेश रख ली, लेकिन छोटी पुस्तकें बेचने की धुन में मैं बड़ी पुस्तकों के बारे में भूल गया। एकाएक एक महिला मेरे पास आई और बोली वह बड़ी पुस्तक क्या है जिसे आपने यहाँ रखा है। तब मुझे प्रभुपाद की और अपनी प्रार्थना की याद आई और मैंने कहा यह टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य है। मैंने उसे पुस्तक दे दिया और उसने मुझे $3 दिए। जब मैं मंदिर वापस गया तो मैंने भक्तों को बताया कि किस प्रकार प्रभुपाद ने एक पुस्तक बेची। प्रघोष, मैं डेट्रायट मंदिर में सायंकालीन कक्षा में नियमित रूप से जाया करता था और मंदिर को तैयार करने में भक्तों को छोटी मोटी सेवा किया करता था। प्रतिदिन रात में मैं चित्र बनाता था और भक्तों को संकीर्तन से लौटने देखा करता था। वे बहुत भाव विभोर और प्रफुल्लित लगते थे और मुझे सदैव ये जानने की कुछ उत्सुकता रहती थी कि वहाँ बाहर क्या करते हैं कि वे इस तरह वापस आते हैं। मैं अपना सीढ़ी पर चढ़कर चित्र बनाता रहता था और उन्हें गर्म दूध पीते हुए बातें करते सुनता रहता था। वे बात करते कि किस तरह उन्होंने एक व्यक्ति को दरवाजा खटखटाया और तब ये हुआ और उसके बाद वह हुआ। उनकी बातें मेरे लिए बड़ी आकर्षक होती थी। जब मैं मंदिर में चला आया और वहां मेरे भक्त के रूप में रहते एक सप्ताह बीत गया तो किसी भक्त ने पूछा कि क्या मैं बाहर जाकर पुस्तकें वितरित करने का प्रयास करना चाहूंगा। अतः मैं धोती पहनकर और तिलक लगाकर निकला। मैं सीधे लोगों के पास जाता, उन्हें एक कार्ड और एक पुस्तक देता, पुस्तक की विषय वस्तु के बारे में उन्हें बताता, प्रभुपाद का एक चित्र उन्हें दिखाता और अनुदान मांगता। इससे मुझे जो आनंद प्राप्त हुआ वह अविश्वसनीय था। बाहर जाना और पुस्तकें वितरित करना अति आनंददायक साबित हुआ। हमें में से कोई भी नहीं बता सकता कि ये इतना आनंददायक क्यों था। हम लोग रात में जगते हुए लेटे रहते थे, सभी ब्रह्मचारी एक बड़े कमरे में रहते थे, हम अपने स्लीपिंग बैग में फर्श पर लेटे रहते थे और एक दूसरे से कानाफूसी करते रहते, तुमने वहां लोगों से क्या कहा, रात में कमरे में तरह तरह की ये सब बातें होती रहती थी, बत्तियां बुझी रहती और हर एक बात करते हुए ये बताते की कोशिश करता कि प्रभुपाद की पुस्तकों को और लोगों के सामने कैसे प्रस्तुत करता था। जगत धात्री देवी दासी मेरी पहली सेवा मंदिर की सफाई करनी थी, मैं पूरा मंदिर साफ करती थी, मैं खिड़की से बाहर उन लोगों को देखा करती थी जो संकीर्तन के लिए तैयार होकर गाड़ियों में चढ़ते थे और मैं सदा सोचती थी कि सचमुच ऐसा करना मुझे भी बहुत पसंद आएगा। अंत में हमारे मंदिर में दो यात्रा दल बनाए गए, एक पुरुषों का दूसरा महिलाओं का, और ग्रीष्म ऋतु में हम वाशिंगटन स्टेट के मेले में पुस्तकें बांटने गए। पुरुषों और महिलाओं में प्रतिद्वंद्वता रहती थी कि अधिक पुस्तकें कौन बांटता है। सूर मैं कृष्ण भावना मृत आंदोलन में सियालदह में 1973 में सम्मिलित हुआ और मुझे पहले ही दिन पुस्तक वितरण के लिए भेजा गया। लॉस एंजलिस से हमें हमेशा उन पत्रों के बारे में खबर मिलती रहती जो प्रभुपाद वहां भेजते थे। हम जो भी सुनते उनके इंद में प्रभुपाद की यही इच्छा रहती कि उनकी पुस्तकें खूब वितरित हो जाए। यह सुनकर ही इच्छुक संकीर्तन दल में बाहर जाने की इच्छा करने लगे और संकीर्तन दल का भाग बनना चाहने लगे। हम प्रभुपाद की पुस्तकों को वितरित करने वाली सेना के सैनिक बनना चाहते थे। हम स्पोकेन मेल में गए और स्पोकेन मंदिर के अध्यक्ष ने प्रभुपाद को एक पत्र लिखकर उनसे आने की प्रार्थना की और हमारे पुस्तक वितरण के परिणाम के बारे में उन्हें बताया। तब प्रभुपाद से हमें उत्तर मिला कि वे नहीं आ सकते, किंतु भक्तों को मेले में जाकर उनकी ओर से प्रचार करना चाहिए। उन्होंने कहा, मेरे इस महान लक्ष्य को पूरा करो ताकि संयुक्त राज्य के प्रत्येक पुरुष और स्त्री के पास हमारी एक पुस्तक हो। हम इसी की प्रतीक्षा कर रहे थे कि श्री प्रभुपाद ने हमें आदेश दे दें कि किस बात से प्रसन्न होते हैं। हमारा पुस्तक वितरण बराबर बढ़ता गया और हमने सोचा कि इतना आनंद पहले कभी नहीं आया था, यह कठोर जीवन जैसा नहीं था। कुछ भक्त सोच रहे थे संकीर्तन के लिए बाहर जाना बहुत कठिन काम है। हम सोच रहे थे तुम लोग बिल्कुल जड़ हो, संकीर्तन के लिए जाना और पुस्तकें बेचना बड़ा ही आनंददायक कार्य है, यह इंद्रिय तृप्ति के लिए आनंददायक नहीं था वरन आत्मा के लिए था, क्योंकि यह हमारे गुरु महाराज और कृष्ण से जुड़ा हुआ था। मैं इसको इसी कारण पसंद करता था और जब मैं पहली बार प्रघोष से मिला तो मुझे मालूम हो गया कि वह सचमुच समर्पित था, वह प्रभुपाद का सच्चा प्रेमी था, क्योंकि पुस्तकों के वितरण द्वारा वह प्रभुपाद को प्रसन्न करने के प्रति समर्पित था। प्रघोष हम सांता बारबरा कैलिफोर्निया में पुस्तक वितरण कर रहे थे। उस क्षेत्र में पहले भी कई बार कार्य हो चुका था और वहां के लोग सचमुच घमंडी थे। मैं कुछ ब्रह्मचारियों के साथ वहां गया और एक पूरे दिन में 7 घंटों में प्रयत्न के बाद केवल एक पुस्तक बेच पाया। भक्त के रूप में मेरे साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मैं बराबर लगा रहा और रुका नहीं, किंतु एक समय ऐसा आया कि मैं और आगे सहन नहीं कर सका। मैंने एक पुस्तक एक व्यक्ति को दे देने की कोशिश की और उसने बड़े घिनौने ढंग से मुझे उत्तर दिया। मैं कितनी सद्भावना से यह कह रहा था कि लेकिन जब उसने ऐसा किया तो मुझ पर जैसे वज्रपात हो गया। मन में आया कि उस भले मानस की नाक पर एक घूसा जड़ दूं। मुझ में भावना की बाढ़ आ गई और मेरे आंसू बहने लगे। सड़क के किनारे पड़े एक पुराने टेलीफोन के खंभे पर मैं बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। तब यह भक्त मेरे पास आया और मुझे इस तरह बैठा पाया मानो मैंने संसार में अपना सबसे प्रिय मित्र खो दिया है। उसने कहा, प्रभु मामला क्या है? मैंने कहा, मैं नहीं जानता कि मामला क्या है, बस मैं पुस्तक वितरण नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति पुस्तक लेने को तैयार नहीं। मैं यहाँ 7 घंटे से बैठा हूँ, क्या तुम जानते हो कि मैंने कितनी पुस्तकें बेची? केवल 1 पुस्तक। तब वो बैठ गया, मुझे उपदेश दिया और मुझे फिर से स्वस्थ चित्त बनाया। अगले दिन मैंने पहले से अच्छा करने की कोशिश की। मैं पुस्तकों का थैली लेकर गया और पूरे दोपहर तक एक के बाद दूसरे व्यक्ति के पीछे भागता रहा। तब मैंने एक लड़की को एक पुस्तक दिखाई और उसने कहा कि वह पैसे में भुगतान नहीं कर सकती, किंतु वह प्रसन्नतापूर्वक उसका बदला देगी। मैं युवा था और भोला भाला था और एक मिनट तक मेरी समझ में नहीं आया कि वह किस बदले की बात कर रही है। अंत में जब मुझे समझ आई तो मैं बोल पड़ा, हरे कृष्ण, और मैंने उससे पुस्तक वापस ले ली, सिर से बिग उतार ली और दौड़ता हुआ दूसरे पार्किंग अड्डे पर जा पहुंचा। दिन भर मैं एक के बाद दूसरे आदमी के पास भागता रहा और सच्चे मन से कृष्ण से प्रार्थना करता रहा। दिन समाप्त होते होते बहुत सारी पुस्तकें बिक गई। लवंग लतिका देवी दासी, जब मैं पहले पहल लॉस एंजल्स में आई तो श्रीमती ने मुझे बताया कि श्रील प्रभुपाद ने कहा था कि पूरा समय मंदिर में बिताना माया है। प्रभुपाद चाहते थे कि हम घर घर जाकर बीटीजी पत्रिकाएं वितरण करें। मैंने अन्य भक्तों के सीखा कि पुस्तकें कैसे बांटी जाती हैं। बहुत से ऐसे अनुभवी भक्त थे जो यह जानते थे कि इसलिए मैंने उन्हीं का अनुसरण किया। वे जो करते और कहते वही मैं करती थी। इस तरह यह बहुत आसान हो गया। जब कोई व्यक्ति पुस्तक लेता और अनुदान देता तो मैं उसे भगवान चैतन्य का ही कार्य समझती थी। मैं समझ रही थी कि हर काम कृष्ण की आंतरिक शक्ति के अधीन हो रहा है। टॉम बाउंड्री सांता क्रूज से लॉस एंजलिस आ गया था और रामेश्वर तथा अन्य पुस्तक वितरकों जैसे भक्तों के साथ अपने आप को संबंधित कर लेने से वो बहुत जल्दी एक नेता बन गया। उसने जून 1972 में दीक्षा ग्रहण की थी और त्रिपुरारी दास नाम प्राप्त किया था। वह प्रतिदिन मंदिर के निकट किसी सुपर बाजार में वाहनों के अड्डे पर जाता और इजी जर्नी टू अदर प्लैटनेट्स की 200 प्रतियां बेच आता। एक दिन लॉस एंजलिस में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में लॉन्ग बीच पर वह और कुछ अन्य पुस्तकें वितरण योग के एक लोकप्रिय नेता द्वारा दिए जा रहे एक व्याख्यान को सुनने पहुंच गए। रामेश्वर, मुझे याद है जब वे वापस आए तो मंदिर कक्ष में मैं गीता की कक्षा बीच में था। अचानक दरवाजा खुला और मैं वहां खड़े थे। त्रिपुरारी बाजार के लिबास में था और लड़कियां साड़ियां पहनी थी। वे भागकर मंदिर में घुसे। कोई भी देख सकता था कि कोई विशेष बात हुई क्योंकि उनके चेहरे चमक रहे थे। वे बोल भी नहीं सकते थे, वे स्तंभ थे। पूरा मंदिर समाचार जानने को उत्सुक था, इसलिए मैंने शीघ्र कक्षा समाप्त कर दी। तब त्रिपुरारी ने हमें बताया कि उसने भागवत गीता के संपूर्ण 7 जिल्द संस्कार की 17 प्रतियां वितरित की थी केवल 2 घंटे में। लीला शक्ति ने 13, वृंदावन ने 11, तिलक ने 11 और माखन लाल ने 9 प्रतियों का वितरण किया था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। हम सभी आश्चर्यचकित थे कि बड़ी पुस्तकों की कोई इतनी प्रतियां कैसे बेच सकता है। कुछ दिन बाद त्रिपुरारी सवेरे सवेरे सैन थियागो फ्रीवे में एक चलते हुए संकीर्तन दल के साथ जाने के लिए गाड़ी में जा रहा था। उसे लॉस एंजलिस हवाई अड्डे का मार्ग चिन्ह दिखाई दिया और जहाज ही उसने वहां कोशिश करने का निर्णय लिया। उस दिन वहां 1 दर्जन बड़ी पुस्तकें बेच लेने के बाद उसे लगा कि पुस्तक वितरण के लिए हवाई अड्डा बहुत उपयुक्त स्थान है। वह नियमित रूप से हवाई अड्डा जाने लगा और प्रतिदिन 30-40 पुस्तकें बेचने लगा। कभी कभी तो वह एक ही व्यक्ति को श्रीमद् भागवतम की 6 प्रतियां बेच लेता था। समय हो गया क्या? समय हो गया, समय हो गया प्रभु जी। तो प्रभुपाद जी के शिष्यों का उत्साह आप लोग देख रहे हैं कि भागवत गीता वितरण में, बड़ी पुस्तकों को बेचने में और छोटी पुस्तकों को बेचने में कितने उत्साहित होते थे, और पहले कितना उनका अरुचि थी, लेकिन कितनी रुचि बढ़ गई है कृष्ण भगवान की कृपा से। प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज पर विश्वास रखते थे और उनकी वचनों का पालन करके अमेरिका में गए थे। उन्हें विश्वास था कि गुरु महाराज ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि हम विदेश में अच्छा प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी की इंग्लिश अच्छी थी, इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि आप विदेश जा सकते हैं और अंग्रेजी में प्रचार कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने गुरु की आज्ञा को मानकर प्रचार में आगे बढ़े और गुरु के ही आशीर्वाद से प्रचार में सफलता मिली। इसलिए हम सबको अपने गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी के बहुत शिष्य इस समय है, दुनिया में प्रचार कर रहे हैं और हमें भी आके प्रोत्साहित करते हैं भागवत गीता वितरण के बारे में। जैसे जयपताका महाराज हैं, इतनी बीमारी से जूझते हुए भी आकर के हम लोग को प्रोत्साहन देते हैं भागवत गीता वितरण का, क्योंकि इन लोगों ने प्रभुपाद जी की आज्ञा का पालन करके अच्छी तरह से बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन पूरे विश्व में किया है। इनको अपने गुरु पर विश्वास था, इसी तरह से हम लोगों को अपने गुरु पर विश्वास करके, जैसे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज आते हैं तो खास करके दिसंबर महीने में खाली भागवत गीता पर क्लास देते हैं कि भागवत गीता वितरण कीजिए। पूरे संसार को अगर हम शुद्ध बनाना चाहते हैं तो प्रभुपाद जी की पुस्तकों का वितरण के द्वारा ही शुद्ध कर सकते हैं। प्रवचन के द्वारा हम बहुत कम प्रचार कर सकते हैं, लेकिन पुस्तकों के वितरण के द्वारा हम अधिक प्रचार कर सकते हैं। हर घर घर में गीता पहुंचा सकते हैं, भगवान के संदेश को पहुंचा सकते हैं। तो अपने घरों में सभी व्यक्ति अगर भगवान के संदेश को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से भगवान के भक्त बनेंगे। विश्व को सुधारने के लिए दूसरा कोई तकनीक नहीं है, केवल भगवान की पुस्तक का प्रचार करना ही विश्व को सुधारने का महत्वपूर्ण कार्य है। अगर हम कुछ योगदान देना चाहते हैं तो सबसे बड़ा योगदान है प्रभुपाद जी की पुस्तकों का वितरण करना। इससे हम विश्व का कल्याण कर सकते हैं। जो संत होते हैं पर दुखे दुखी होते हैं, दूसरों का दुख देख करके दुखी होते हैं। जैसे नारद ऋषि किसी को भी देखते थे तो उस पर करुणा करके उसे भक्त बनाते थे, उसी प्रकार से प्रभुपाद जी ने इस सनातन धर्म का प्रचार करके पूरे संसार में इस पापी से पापी जीवों का उद्धार करने का बेड़ा उठाया और सफलता भी ली। अकेले प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा प्रचार किया तो हम सब प्रभुपाद से जुड़ करके अगर थोड़ा थोड़ा भी प्रचार करेंगे तो पूरे विश्व को कृष्ण भक्त बना सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो हमें अभी भागवत गीता वितरण में लगना चाहिए, घर घर में जाकर के गीता देना चाहिए, स्टेशनों पर जैसे आप बताए कि हवाई अड्डों पे अच्छी बुक्स भी डिस्ट्रीब्यूशन होता था। अंग्रेजों का ऐसा अनुभव है, उसी तरह से अच्छे अच्छे केंद्रों में जाकर के भागवत गीता वितरण करना चाहिए ताकि हम प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर सकें। अगर हम प्रभुपाद जी को खुश करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा उनकी पुस्तकों का वितरण करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की।